मुझे कंफ्यूजन रह गया था, समझे शायद उधर वाला है 9 बजे से, इसलिए मैं सोचा ग्रुप का क्लास है। हाँ मुझे वो ख्याल नहीं रहा, फिर यहाँ गेट पे आके याद आया, जब देखी कोई रौनक नहीं है बाहर, नहीं तो दो चार खड़े रहते। एक बात पे क्लास करेंगे केवल, दादी की बहुत सुंदर विशेषता थी निमित्त निर्माण निर्मल, और आज की मुरली में क्या था, खजाने, और उसमें भी महत्व दिया समय का खजाना, समय के खजाने से सब खजाने कैसे बढ़ेंगे, इसकी बहुत अच्छी चर्चा बाबा की मुरली में थी। तो हमें ध्यान देना है समय हमारा वेस्ट न हो। और दादी ने कौन सी बात कही, मनसा सेवा, जो कुछ भी पूछते थे दादी का एक ही उत्तर था, व्यर्थ नहीं मनसा सेवा, और इकोनॉमी खर्च थोड़ा कम, खुले दिल से खर्च नहीं, थोड़ा सा कंजूसी नहीं, पर जहाँ जो कुछ बचत की जा सकती है उसको इकोनॉमी कहते हैं, सहज भाषा में इकोनॉमी कह दिया बाबा ने। तो मनसा सेवा पे भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में कर लेंगे, आज निमित्त निर्माण और निर्मल, ये किसी भी आत्मा को महान बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट धारणाएं हैं। निमित्त अर्थात बोलो, करण करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं, और कुछ सुनाओ, ठीक बताइए, हम ट्रस्टी हैं, मालिक 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 सचमुच, सोच के बताओ, घर हमारा, मालिक से बाबा, सोच के बताओ, ठीक है। निमित्त भाव, जो कुछ कर रहा है बाबा कर रहा है, जो कुछ हो रहा है उसकी शक्तियों से हो रहा है। मैं इसमें महाभारत की एक कहानी सुनाया करता हूँ, पहले भी यहाँ सुनाई, आज थोड़ा विस्तार से सुना देता हूँ। पांडवों को महाभारत युद्ध में भीम और अर्जुन को ये नशा हो जाता था कभी कभी कि हमने विजय पाई है, और श्री कृष्ण उनको रियलाइज कराता था कि तुमने नहीं। ये बात रामायण में भी दिखाई गई है कि हनुमान को भी कहीं नशा चढ़ा, मैंने ये काम किए, तो उसका नशा तोड़ने के लिए भी राम ने एक दो बार कुछ किया, एक ऐसा ही पुल बनाया कहा इसको तोड़ो, उस पे कूदता रहा, वो टूटा ही नहीं, हल्का सा पुल था, हल्का सा बिल्कुल घास फूस का, तो उसको भी रियलाइज कराया कि तुम जो कार्य किए उसके पीछे, उधर दिखा राम की शक्ति, उधर दिखाया कृष्ण की शक्ति, अभी ईश्वरीय शक्तियाँ थी, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते थे। तो महाभारत का अंत का ये सीन बहुत अच्छा है। भीम को महसूस होने लगा कि मेरी भुजाओं में बल नहीं है, उससे पहले की एक घटना हुई तभी की, कि अर्जुन के मन में लोभ आ गया कि श्री कृष्ण के पास तो सोने की द्वारका है, मैं चलूं और उससे बहुत सारा धन माल ले आऊं। लोभ, ये कलयुग की पहचान बताई गई, कलयुग की पहचान शास्त्रों में दिखाई गई है, कलयुग कब से शुरू हुआ, तो मनुष्य का सोने में ममत्व हो गया, उससे पहले सोना चांदियां था थी, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन सोने में ममत्व हो गया, तो दिखाया कलयुग का प्रारंभ, लोभ बढ़ गया, अर्जुन के मन में लोभ बढ़ा और वो गया श्री कृष्ण के पास ये सब लेने के लिए। श्री कृष्ण ने उसके जितने भी रथ थे सब बढ़ा दिए माल से और बहुत सारी सेविकाएं उसको दे दी, ले जाओ। अर्जुन जब आ रहा था तो दिखाया आबू के पास, भीलों ने उसको लूट लिया डंडों से, उनके बाद तीर कमान थी छोटी और डंडे उससे मारा पीटा उनकी सेनाओं को और सब लूट लिया सोना वोना। अर्जुन परेशान कि महाभारत युद्ध जीतने वाला वही धनुष वही बाण, हम लोगों की तरफ हिंदी में तो इसके आम भजन चलते थे, वीलों ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी। बड़ा निराश होकर अर्जुन आया, भीम को महसूस हुआ बल नहीं रहा है, कुछ ताकत नहीं है। तो युधिष्ठिर ने दूत को भेजा, जाओ श्री कृष्ण के पास दौड़ के, तेज गति से रथ दिया और जाओ जल्दी लाओ बुला के, क्या हुआ है। तो दूत दौड़ा गया और देखा तो श्री कृष्ण तो गए, महानिर्वाण हो गया उनका। तेजी से दूत लौट कर आया और बताया कि श्री कृष्ण नहीं रहे। तब इन पांडवों को महसूस हुआ, युधिष्ठिर को महसूस हो रहा था मेरे पास धर्म की शक्ति खत्म हो गई है। बहुत अच्छी बात, उसमें वर्णन है, मुझे सारी बातें तो भूल गई, पर वो इतने अच्छे 10 लक्षण दिखाए थे जो स्थिति के महत्व को दर्शाते हैं। क्या दिखाया? युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जब मैं रास्ते से जाता हूँ तो कुत्ते भौंकते हैं आजकल, पहले कुत्ते नहीं भौंकते थे उसे, उसके वाइब्रेशन इतने जबरदस्त थे कुत्ते नहीं भौंकते थे। दूसरी बात उन्होंने लिखी थी कि घरों में ताले लगाने पड़ रहे हैं, कुछ हो गया है, चोरी होने लगी है, रात को रोने की आवाज आती है कहीं कहीं से, उनके राज्य में कोई रोता नहीं था। 10 लक्षण लिखे गए, तब मैं सोचा मुझे याद रह जाएंगे, अखबार में आए थे लेकिन मुझे भूल गए। तो उन्होंने जो भगाया दूत को और वो आया तो इन्हें महसूस हुआ सब कि शक्तिशाली तुम नहीं थे, तुम्हारे साथ ईश्वरीय शक्ति काम कर रही थी, वो भी गए, अब तुम भी चलो। राज परीक्षित को दिया और वो भी गए। तो यहाँ दिखाया है कि सब काम ईश्वरीय शक्तियों से हुए। हम सब ज्ञान युक्त होकर अगर विचार करेंगे तो महसूस होगा संगम युग पर सारे काम बाबा की शक्तियों से हो रहे हैं। मैं अपने लिए सोचा करता हूँ, मान लो मैं क्लास कराता हूँ, लोग बड़ी वाह वाह करते हैं, आज सवेरे दादी पे क्लास कराई नीचे, मैं तो ऐसे ही कराई तो बिना कुछ सोचे समझे, कहा भाई एक साथ 12,000 लोग बाहर जाएंगे, कंट्रोल नहीं होगा, 1,500-2,000 को उठाए, 1,000 को उठाए, बाकी बैठे रहे, इनकी क्लास कराते रहो, सब बैठ गए। तो मैंने ऐसे ही कराई सिंपल, दादी के बारे में लोग वो वहाँ शांति वन वाले भी वहाँ प्रैक्टिकल बात बता दी आपने, तो कोई बताता ही नहीं था, मैं किचन में गया वहाँ भी चल रहे थे स्पीकर कि हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था, आज अच्छी जानकारी हो गई। तो मैं सोचता हूँ ये सब काम मैं कराता हूँ, मैं भी सोचता हूँ अपने बारे में कि जहाँ तहाँ नाम होता है और इसका क्लियर आभास होता है कि ये सब बाबा का काम है, वो चाहे तो किसी के द्वारा भी काम करा ले, एक गधे को पावर दे दे राजा बना दे, ये सच्ची बात है। मुझे गधे की बात क्यों याद आई, मिलिट्री में एक भाई ने कहानी सुनाई अपनी, वो था सूबेदार होते है ना मिलिट्री में, JCO कहते हैं ना, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, तो उनके द्वारा कर्नल सारा काम कराता है, वो जैसे उनके नहीं माध्यम होते हैं, उनको वो बताएंगे वो सबसे काम कराएंगे। तो उसको काम पड़ा घर में, तो उसने कहा कि सर मुझे घर से बुलावा आ रहा है, मैं जाने की तो सोच रहा हूँ पर ये काम कौन करेगा यहाँ, मुझे दुविधा हो रही है, कि मैं चला जाऊंगा, ये सारा काम तो रुक जाएगा आपका। तो कर्नल ने कहा, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, तुम जाओ, मैं तो एक गधे को बांध दूंगा ना यहाँ, उसके द्वारा भी काम होता रहेगा, मिलिट्री की डिसिप्लिन है ये। तो मुझे याद आया कि बाबा चाहे तो किसी बहुत कम बुद्धि वाले से भी अपने सारे काम करा ले। और ये आभास उस दिन सब ब्राह्मणों को होने लगेगा जब जय जयकार होगी निकट भविष्य में। तो बाबा अपनी शक्तियों से किसी को वरदान देकर, किसी के सिर पे हाथ रखकर अपना काम करा रहा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इससे क्या छूट जाएगा हमसे? मैंपन, सबसे सूक्ष्म माया मैंपन की है। इसमें मनुष्य परेशान होता है, उसकी खुशी चली जाती है, उसको कई तरह की निगेटिव फीलिंग्स होने लगती हैं। मैं माताओं को क्या किस रूप में होता है? मैं माताओं में होता नहीं, बोलो है नहीं होता, देख लो अच्छी तरह। मेरे बच्चे वो तो नहीं है आपके, तो कैसे कहेंगे मेरे नहीं है, बच्चे तो आपके ही है ना। मैं घर की बड़ी हूँ, मालिक हूँ, मेरा कहना माना जाए, ये भी मैं है ना। ये देखो घर का डिसिप्लिन तो है कि कोई बड़ा है, या मान लो मधुबन में डिपार्टमेंट है, उसका कोई इंचार्ज है, उसकी बात सबको माननी चाहिए, वो कार्य करने की कराने की एक विधि है। लेकिन मैं पर न हो, काम करते कराते भी, घर के मालिक होते हुए भी ये फीलिंग रहे कि मैं नहीं मालिक, बाबा है। अपने वहाँ मालिकपन होते हुए भी, मालिकपन के बिना काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन बाबा मालिक है, ये मैं पर अभिमान में न बदल जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। दूसरी एक बात जिस पर सदा ध्यान रखना है जीवन में, चाहे आप लौकिक में रहते हैं, अलौकिक वाले हैं, जो कुछ हमारे पास है क्या है वो? ईश्वरीय देन, ये बाबा के सब सब पक्का कर दे। बाबा के सब थे प्रभु देन है, कुछ भी बुद्धि है, धन है, बोलने की कला है, चिंतन की कला है, योग बहुत अच्छा लगता है, ये भी हमारा योग भी बहुत अच्छा लगता है, हम देख सकते हैं, सब अनुभवों से देख सकते हैं, जब तक प्रभु कृपा हमारे ऊपर न हो योग लगेगा, सच है, मेरे भी अनुभव है। इसलिए ये सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सब कुछ ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा हो रहा है। ये बात संगम युग के लिए है, बाद में ये बात संसार में एक फिलोसॉफी के रूप में फैल गई, सब कुछ भगवान करा रहा है, तो लोग प्रश्न पूछने लगे ये पाप अत्याचार भी वही करा रहा है क्या? ये बात केवल संगम युग की है, इसके अलावा नहीं। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, कर्म आत्मा ही कर रहे है, उसमें बाबा नहीं करा रहा, लेकिन संगम युग पर अपना स्थापना का कार्य, युग बदलने का काम, प्रकृति को बदलने का काम, मनुष्य को देवता बनाने का काम जो हमारे द्वारा भी होता है, बाबा की शक्तियों के द्वारा, ऐसा निमित्त भाव सबके अंदर रहना चाहिए, इसको बढ़ाना है। ये भी सूक्ष्म साधना है हमारी धारणाओं की, एक दिन में नहीं आ जाता, इस पर चिंतन की जरूरत होती है। दूसरा है निर्माण माना निरहंकारी, ये भी हमारी बहुत बड़ी साधना है। और बाबा के अंतिम तीन शब्दों में ये एक इम्पोर्टेंट है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसमें भी मैंपन और अहंकार में भी मैंपन होता है। लेकिन किसी भी चीज का मनुष्य को इनकार आ जाता है, उस पे ध्यान देना है। कर लो भाई बंद जिसका खिलौना बजा हो, अरे आप ही कर दो नीना बहन। माताओं की समस्या ये है कि बैग में भी बैग होगा, चलो तो आप ही बंद हो जाएगा, इसमें आप खोलेंगे। तो हमें बहुत निरहंकारी बनना है, और इसमें सबसे बड़ी चीज हो मान की कामना नहीं, निष्काम। मान की कामना बड़ी सूक्ष्म है। मनुष्य थोड़ा भी अच्छा काम करेगा, उसे संकल्प होगा मेरी महिमा हो, मुझे अप्रिशिएट किया जाए। मान की कामना से मुक्त, विशेष चिंतन करेंगे निर्मल, हमारा चित्त निर्मल हो जाए। किसे कहेंगे निर्मल चित्त? जिसके मन में मैं न हो, ठीक बात है। और निर्मलता शीतलता कैसे आती है? पवित्रता से आती है। बहुत प्योर आत्मा निर्मल हो जाती है, किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना कटुता मन में घृणा नफरत ये सब न हो, निर्मल। हमारा मन शुभ भावनाओं से भर गया हो, ये है निर्मलता। इस पर बहुत ध्यान देना है। निर्मल चित्त जिसका है उसे किसी भी बात में क्या नहीं आएगा? क्रोध नहीं आएगा, चित्त शीतल हो गया है। ये हमारी एक और बहुत बड़ी साधना है। जब आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हो जाएगी तो उसका चित्त पूरी तरह शांत शीतल निर्मल, क्रोध नहीं। किसी भी कारण से क्रोध आता है तो शीतलता निर्मलता नहीं। इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, मन में किसी के लिए कोई मैल न हो, यह निर्मल स्थिति। सब चेक करें अपने को, किसी दूसरे के लिए हमारे मन में क्या क्या है, सोचने की बात है। मुझे एक बात बार बार आ रही है अभी ख्याल में, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात तो किसी की है, एक माता मेरे से मिलने आई। देखो कैसी समस्याएं आती हैं परिवारों में, लेकिन इस माता की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मुझे उसे देख के बड़ी खुशी भी हुई। आयु 55 साल, कहा 5 साल पहले मेरा पति गया, एक लड़का था, 2 लड़के थे, छोटा गया, एक बड़ा रहा। उसकी अब शादी हुई 2 साल पहले, उसकी पत्नी इतनी तेज तराक आई कि लड़के को ले गई बाहर, मेरे से मिलने नहीं देती। 2 साल हो गए वो मेरे पास मिलने नहीं आया, कभी फोन नहीं करता है, उसने उस पे ऐसा जादू कर दिया है। माँ, मैं उसकी माँ हूँ लेकिन वो मुझे अपने दुश्मन समझता है। कैसी स्थिति देखो ये है, एक लड़का की मृत्यु हुई, पति की मृत्यु हुई, एक बच्चा था उसकी भी मृत्यु जैसे हो गई। लेकिन इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। मुझे कई बार आज उसकी याद आई, मैंने कहा देखो माताओं को बाबा ने शिव शक्ति बना दिया है ना, बन गई है ना, सचमुच शिव शक्ति बना दिया। तो मैं इसे पूछा मैं क्या करूं? इस कहानी से स्पष्ट है कि विघ्न ज्यादा है जीवन पर, विकर्म भी है और विघ्न भी है जीवन पर ज्यादा, जो बेचारी अकेली रह गई। मैंने कहा तुम्हारी स्थिति का ऐसे, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, बाबा मुझे मिल गया। पति की मृत्यु हुई तब से ये ज्ञान में आ गई थी। कहा मुझे बाबा मिल गया इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ, पर मैं केवल इतना ही चाहती हूँ मेरा लड़का भले ही अलग रहे, कभी मिलने तो आ जाया करे, साल में 1-2 बार, ये तो हर व्यक्ति चाहेगा ना, बात बच्चे की नहीं, कोई हमारा फ्रेंड भी हो, हम चाहेंगे ना भाई कभी तो मिलन हो, फोन पे तो बात कर लो। लेकिन कैसा लगता है उस माँ को जिसका बच्चा उसे बिल्कुल धो और उसके पटने का ये काम। लड़की आजकल बहुत हाई फाई आ रही है ना, तो इसलिए माँ तुम्हारी दुश्मन है, माँ से कनेक्शन रखा तो मैं भाग जाऊंगी घर अपने, सीधा कह देती है अपने पति को, मैं सुनता हूँ ये बातें। पति को कहती है अगर माँ से माँ से प्यार रखना है तो मेरे से छुट्टी उससे ही रखो, और मेरे से रखना है तो माँ को विदाई दे दो। एक और कहानी ऐसी हुई, एक भाई हमारे यहाँ था सेवा में, उसके बड़े भाई की शादी हुई थी, उसको हो गए 12-13 साल। ये माताओं को सब ये कहानी जाननी चाहिए, इसलिए बताता हूँ आप अपने बच्चों को बच्चियों को समझा सके सिखा सके। उसकी भी शादी हुई थी ऐसे ही, पत्नी ऐसी आई और उसपे वशीकरण मंत्र कराकर उसको ले गई, जहाँ नौकरी थी ना वहाँ चलो माँ रहेंगे। 11 साल हो गए माँ से मिलने नहीं दिया, 11 साल न फोन न कोई कॉन्टेक्ट, लेकिन 11 साल तक उसको संतान नहीं हुई। तब वो पहुंची ज्योतिषी के पास कि संतान नहीं हो रही है, देखो मेरी जन्म पत्री क्या है। ज्योतिषी होशियार था, उसने देखा और कहा तुमने किसी व्यक्ति को उसकी माँ से वंचित कर दिया है जीवन में। अब वो सोचने लगी किसको किया है, पति को ही तो किया था। फिर उसने पूछा पंडित ने तुमने अपने पति को उसकी माँ से वंचित कर दिया है ना। अब इसकी हवा उड़ने लगी चेहरे की, कहा तो ये कर्मों का खेल है तुम्हारे साथ, उसकी सजा है तुम्हें कि तुम निसंतान रहोगी, जाओ कोई उपाय नहीं है। अब इसको होश आई कि जीवन क्या होता है, आगे हो गया कल या नहीं। ऐसी जो आत्माएं हैं आजकल, एक और बहुत एजुकेशन बढ़ रही है हमारे देश में भी, लेकिन एजुकेटेड लड़कियां सुखी नहीं है आजकल। मेरे से बहुत कॉन्टेक्ट होते हैं, सुखी नहीं है क्योंकि एजुकेशन ने बुद्धि को सही दिशा नहीं दी है, गलत दिशा दे दी है। वासनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। कल हम सुन रहे थे, मेरे पास भी टाइम था, नीचे था मैं तो टीवी जरा सी खोली तो वारात बॉम्बे में गैंगरेप हो गया है, तो किसी ने बोल दिया होगा कोई नेता वेता के लड़कियां कपड़े भी तो ऐसे ही पहनती हैं आजकल। अब उस पे हाहू हो गई, कपड़े कैसे पहने, लेकिन तुम्हारा क्या हक है ये काम करने का, हम कैसे भी कपड़े पहने। आंदोलन शुरू हो गए जहाँ तहाँ, नारी संगठन है और पत्रकारों के संगठन हो गए। तो देखिए ये किसी को ख्याल नहीं कि संसार में वासनाएं बढ़ रही हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। अब हम लोगों को स्पष्ट कहते हैं, आज तक सब कहते थे ब्रह्मा कुमारियाँ क्या ये ज्ञान देती हैं, पवित्रता पवित्रता समझ में आता है ना, कि वासनाओं से कितना बुरा हाल होता जा रहा है। पत्रकार बोल रहे थे कि बॉम्बे में रोज एक का रेप होता है, ये तो वो है जिसकी पुलिस में रिपोर्ट होती है, न जाने कितनों का होता होगा या नहीं, कितना पाप बढ़ा है। जो दादी भी कह रही थी ना नीचे, पाप गंदगी बढ़ती जा रही है और इसकी अति होगी तो ही अंत होगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे, क्या करें, विवश ये स्थिति आती जा रही। अब सरकार क्या करे, गृह मंत्री क्या करे, पुलिस क्या करे, वासनाएं बढ़ रही है ना, इसका पति होती जा रही है, तो सब विवश हाथ खड़े कर देंगे। और एक दो साल में अब हम देखेंगे सब हाथ खड़े कर देंगे कि कुछ नहीं कर सकते, तब लोगों को याद आएगा कि भगवान ठीक कहते हैं, काम महा शत्रु है, इसको जीतो, इसके बिना इस संसार को चलाया नहीं जा सकेगा। तो हमारी प्योरिटी का महत्व अब संसार को पता लगता जा रहा है और हम सब अपनी पवित्रता को इतना बढ़ाएं, क्या ध्यान से सुनेंगे कि मनुष्य को खासकर, मनुष्यों को खासकर तो मैं इसलिए कहा था युवकों को, लेकिन बड़ों का भी तो बुरा हाल है, आसाराम जी के लिए भी कितने वो हो रहे हैं आजकल, हाहू हो रहा है ना बहुत, 75 साल का सन्यासी, अभी झूठ है या सच पर लगता तो सच ही है जैसा पत्रकार और अखबार आदि आ रहे हैं, क्या है वो तो वो जाने, लेकिन हम अपनी पवित्रता को ऐसा बढ़ाएं कि हमारे पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों को पाप न करने की प्रेरणा दें, रोक दें उन्हें। सबको ये ख्याल रखना है, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस में ये शक्ति रहेगी कि जहाँ युवक या कोई बड़े ऐसा काम करना चाहेंगे वो रुक जाएंगे, उन्हें आंतरिक प्रेरणा होगी कि नहीं ये काम नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो ये जिम्मेदारी अब हम सब की है कि बढ़ती हुई इस गंदगी में हम सुगंधित अगरबत्ती जला दें अपनी प्योरिटी की। सब इस पे ध्यान देंगे, ये निर्मलता होगी हमारी, क्योंकि इसके अलावा सरकारों के पास कोई तरीका नहीं बचेगा, कुछ है ही नहीं। अब कौन कहाँ जा रहा, कहाँ किससे क्या हो गया, इसमें गृह मंत्री क्या करे बेचारा, पुलिस कहाँ एक एक के पीछे, एक एक को सुरक्षा थोड़ा ही देगी। अभी है भाई टाइम, अच्छा मोबाइल का वजह, ओहो मोबाइल बड़े अच्छे आजकल, ठीक है। तो तीन धारणाओं पे विशेष ध्यान देंगे हम, ज्यादा क्लास अब नहीं कराएंगे, हैं बस थोड़ा सा ही हो गया। मनसा सेवा पे हम क्लास करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी एक क्लास रिकॉर्ड की है यहाँ वेणु के पास ही, वो कैसे सीडी बना रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो रिकॉर्ड करके। मुझे ख्याल नहीं था कि ऐसा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वहाँ पे हो जाता है ना वही बाबा की शक्तियों से, हम तो ऐसे ही बैठते हैं और बाबा की शक्तियों से वो अच्छे से अच्छा हो जाता है, तो वो हम यहाँ क्लास भी करेंगे। लेकिन हम सभी प्रकृति को भी पवित्र वाइब्रेशंस दें और इस पर विशेष ध्यान दें, हम अपने पवित्रता के स्वभावों को बढ़ाएंगे। जैसे मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इनको बढ़ाते चले तो इनसे सुंदर अनुभव होंगे, हमसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलेंगे और ये गंदगी मिटेगी। मिट्टी तो है, हर कल्प मिटी है, ये समाप्त हुआ है, पाप और पापियों को समाप्त करने के लिए तो बाबा ने यज्ञ रचा है। इसमें सारे पाप की भी आहुति पड़ जाएगी, सारे विकारों की आहुति पड़ जाएगी। तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ इन तीन चीजों पर करेंगे, क्योंकि समय की ये मांग है हम निर्मल बने। इस चित्त में अग्नि जलती है, इस द्वेष की हो, बदले की भावना की हो, क्रोध की हो, नफरत की हो, ये अग्नि है ना, ये हमारी शीतलता को नष्ट करती है। इस पर हम बहुत ध्यान देंगे, फिर दोबारा जल्दी क्लास कर लेंगे भाई। तो सभी क्या अभ्यास करेंगे तब तक, एक तो पवित्रता के स्वमान का, और जो दादी ने आज विशेष रूप से कहा, जब ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजे तब मैं पवित्रता का स्वमान याद करें, या मैं मास्टर सर्व शक्ति, दादी भी कह रही थी मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, ऊपर से कनेक्शन जोड़े, शक्तियाँ ले और फैलाएं। तो ये अभ्यास चाहे पवित्रता की किरणें लेकर चारों ओर फैलाएंगे, चाहे शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाएंगे, तो हर ट्रैफिक कंट्रोल पर सभी को संसार को वाइब्रेशंस देने का काम करना है। इससे ध्यान देंगे, हमारे लिए बिल्कुल सहज है ना, एक बचता है, हमें बस याद आ जाए कि हमें तो वाइब्रेशंस देने हैं, ठीक है। ओम।